ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी का ये सत्र राजयोग शिविर का सत्र है कि हम अपने मन को उस ईश्वर पिता में कैसे एकाग्र करें और वो एकाग्र करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं आज हर इंसान जीवन के अंदर मुख्य रूप से दो चीजें चाहता है, एक खुशी हो और दूसरा शांति हो। और उस खुशी और शांति के लिए हर इंसान अपने अपने तरीके से प्रयास करता है, अपने अपने भागदौड़ करता है। कोई सोचता है बहुत पूजा पाठ करें, ध्यान करें, समाधि लगाएं तो जीवन में शांति मिलेगी। कुछ लोग सोचते हैं बहुत भौतिक सुविधाएं इकट्ठी कर लेंगे तो जीवन में शांति मिलेगी। लेकिन केवल भौतिक चीजें जीवन में सच्ची शांति नहीं दे सकती। तो आज हम थोड़ा सा इस विषय पर चिंतन करेंगे कि राजयोग क्या है, मेडिटेशन क्या है, उसका प्रथम कदम क्या है, अपने आप की पहचान। और उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि खुशनुमा जीवन जीने के लिए ये समझना जरूरी है कि खुशी क्या है और खुशी कहाँ है। अक्सर मनुष्य सोचता है एक सुंदर सा मकान हो, बिल्डिंग हो, संपत्ति हो, बच्चे हो, पत्नी हो, बस ये जो भी भौतिक चीजें हैं इनके अंदर ही खुशी को तलाशता है। लेकिन केवल ये चीजें तो बहुत लोगों के पास हैं, लेकिन उसके बाद भी मनुष्य की ये शिकायत बनी रहती है कि जीवन में बहुत अशांति है। कई बार कुछ लोग कहते हैं बहन जी परमात्मा की दया से सब कुछ है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। तो खुशी क्या है और खुशी कहाँ है? केवल बाहर की चीजों में नहीं, लेकिन वो खुशी एक हमारे अंदर का विषय है, अपने चिंतन का विषय है। तो उसके लिए खुशी वास्तव में मेरी मन की स्थिति में है। किसी व्यक्ति को यदि डनलप के गद्दों पर हो, एसी रूम के अंदर हो, सब खाने पीने की सारी सुविधाएं हो, लेकिन उसके मन में कोई तनाव है, चिंता है, तो डनलप के गद्दों पर भी रात को उसे नींद नहीं आएगी। तो खुशी केवल बाहर की चीजों में नहीं, लेकिन इंसान के मन की स्थिति में है। एक व्यक्ति जो रूखी रोटी खा करके और चैन की नींद सो सकता है, हैं? क्योंकि उसके मन के अंदर चैन है, संतुष्टता है। कई बार हम देखते हैं मजदूर लोग बड़े आराम से फर्श पर भी सो जाएंगे, वहां पर भी नींद आ जाएगी, क्योंकि मन के अंदर धीरज है, संतोष है कि जो आज मिला है वो बहुत है। तो इसलिए खुशी इंसान के मन की स्थिति में है। और हमारे मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? मनोस्थिति दूसरों के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अपनी मन की स्थिति अपने कंट्रोल में है। तो इसलिए जब तक हम खुद का राजा नहीं बनेंगे, खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, आत्मनियंत्रण नहीं होगा, तब तक सच्ची शांति जीवन में प्राप्त नहीं हो सकती। हम देखते हैं आज मनुष्य का जीवन कैसा है। सुबह से लेकर के शाम तक चाहे धनहीन है या धनवान है, किसी बड़े पद पर है या छोटे पद पर है, हर व्यक्ति के जीवन में तनाव है। एक छोटा सा बच्चा जो होता है उसकी अगले दिन परीक्षा होती है तो वो भी कहता है मम्मी आज मुझे बहुत टेंशन है। टेंशन की डेफिनेशन नहीं जानता, लेकिन वो फील करता है कि आज मैं बहुत इरिटेट हूं, कल मेरा पेपर है। तो इस प्रकार से छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक हर इंसान के जीवन में बहुत तनाव है, अशांति है, दुख है। यदि उसी स्ट्रेस को हम एक इक्वेशन के रूप में यहां देखें तो स्ट्रेस वास्तव में क्या है, तनाव क्या है? स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाय इनर पावर्स। हमारे जीवन में बहुत सारे प्रेशर हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी को मन की है तो किसी को तन की बीमारियों की है, किसी को आपसी संबंधों की है तो किसी को जो है ना राजनीति से शिकायत है। बहुत सारी चीजें हैं हमारे जीवन के अंदर, लेकिन उन चीजों को फेस करने की जो इनर पावर है, जो आंतरिक शक्ति है, वो हमारे पास नहीं है। और ये स्ट्रेस बढ़ता कैसे है इक्वेशन के हिसाब से? या तो प्रेशर बहुत ज्यादा है और इनर पावर कम है, तभी स्ट्रेस होता है। तो अब हमें उसके सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, प्रेशर्स को हम कम नहीं कर सकते हैं। आंधी आए, तूफान आए, वो हमारे बस में नहीं है। कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गए, वो परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो प्रेशर्स जो आ रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो इनर पावर है, जो आंतरिक शक्ति है, जिसको अगर हम बढ़ाएं ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, तो जितना ये न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, जितना न्यूमरेटर कम होगा और डिनोमिनेटर जो नीचे वाला है उसको बढ़ा देंगे, तो उतना जो स्ट्रेस है वो जीरो की तरफ चला जाएगा। तो इस राजयोग शिविर में हम यही सीखेंगे कि हम अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास कैसे करें। और राजयोग क्या है? तो देखिए, योग जो शब्द है ना, तो योग का मतलब ही है मिलन, जोड़, एडिशन। तो राजयोग क्या है? वो योग, क्योंकि योग तो भौतिक चीजों का भी होता है, लेकिन राजयोग है आत्मा का मिलन ईश्वर के साथ। और इस राजयोग के द्वारा हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, इसलिए इसको राजयोग कहा है। गीता में भक्ति योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, हैं, अनेक तरह के योग भगवान ने सिखाए हैं। राज योग, जिसमें बहुत सारे राज छिपे हुए हैं, जिसमें बहुत सारी सत्यता छिपी हुई है, तो वो राजयोग जब हम आत्मा का मिलन ईश्वर से करते हैं तो अनेक गुणों की, अनेक शक्तियों की प्राप्ति होती है। और राजयोग आज हर इंसान के जीवन में क्यों जरूरी है? एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है, हर इंसान को जीवन में एकाग्रता की जरूरत है, निर्णय शक्ति की जरूरत, डिसीजन पावर चाहिए, मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और जितना जितना हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी ये शक्तियां बढ़ती हैं। तो इसलिए राजयोग बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो राजयोग का जो प्रथम स्टेप है वो है स्वयं की खोज, अपने आप की पहचान, कि मैं वास्तव में कौन हूं। तो देखो, आज किसी से भी ये पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो हर इंसान अपना एक परिचय जानता है कि मैं फलाना हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरे रहने का स्थान है, ये मेरी जाति है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा व्यवसाय है। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई संत है, हर कोई अपना परिचय जानते हैं। लेकिन जो परिचय हम देते हैं वो केवल इस शरीर का परिचय देते हैं, वो हमारा भौतिक परिचय है। ये जन्म मिला, उसके कुछ दिन बाद नाम रखा गया, लेकिन मैं तो उससे पहले भी था, और जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा उसके बाद भी रहूंगा। तो वो मैं क्या है, वो रियल सेल्फ हमारा क्या है? जैसे विवेकानंद जी जब प्रथम बार अपने गुरु के द्वार पर गए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन? तो विवेकानंद जी ने, जब वो नरेंद्र थे, छोटे रूप में थे, उन्होंने कहा, यही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। और बहुत समय से हम ये शब्द सुनते आए हैं, नो दाई सेल्फ, रियलाइज दाई सेल्फ, खुद को पहचानो, खुद को जानो। तो वो खुद क्या है? आज हम इस पर ही थोड़ा चिंतन करेंगे कि वो मैं क्या हूं। ये शरीर जिसका हम परिचय देते हैं, ये तो केवल मात्र हड्डी मांस का पुतला है। मैं केवल ये शरीर नहीं हूं, लेकिन इसके अंदर एक चेतन शक्ति है, एक ज्योत है, और वो ज्योत और ये शरीर मिलकर के ही हम जीवात्मा, जीवित मनुष्य कहलाते हैं। इस शरीर की रचना तो हमें विज्ञान ने भी बता दी है कि इसमें ब्रेन कैसे काम करता है, हार्ट कैसे काम करता है, यह कैसे, ये पंच भौतिक पांच तत्वों का पुतला है। लेकिन इसके अंदर निवास करने वाली वो चेतना शक्ति जो है आत्मा, वो क्या चीज है? तो आत्मा जो है वो एक अति सूक्ष्म प्रकाश पुंज है, एक एनर्जी है, जिसको किसी ने आत्मा कहा, किसी ने चेतना कहा, किसी ने रूह कहा, किसी ने प्राण कहा। वो चेतन शक्ति जो हमारे इस जड़ भौतिक शरीर को चलाती है, मस्तक जहां पर हम तिलक लगाते हैं, यहां ही उसका निवास स्थान है, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज आत्मा। इस भौतिक देह में जब तक विराजमान है, तब तक आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मुख बोलता है। लेकिन जैसे ही वो चेतना इससे अलग हो जाती है, तो ये इतना बड़ा शरीर बिल्कुल मिट्टी के समान हो जाता है। तो वो जो चेतना है, वो आत्मा है, वो प्राण है, वो रूह है। और आत्मा और शरीर दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। इस शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, और फिर एक न एक दिन इस देह रूपी वस्त्र को हम छोड़ देते हैं। ये शरीर केवल मात्र वस्त्र है, जिसको धारण करने वाली देही आत्मा है, जिसका ज्ञान भगवान ने गीता में दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट किया है कि ये आत्मा जो है, इसको न अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकता है, न वायु सुखा सकती है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न च एनम क्लेद्यान्तापो, न शोष्यति मारुतः। आत्मा ऐसी अजर अमर अविनाशी सत्ता है। तो इस देह में जो सत्ता है, जो चेतना है, वो वास्तव में मैं हूं, वो मेरा रियल सेल्फ है। लेकिन जीवन भर इंसान इस देह के अभिमान में बॉडी कॉन्शियस रहता है, और जिसके कारण ही विकार पैदा होते हैं और जीवन में अशांति होती है। तो इस प्रकार से शरीर और आत्मा बिल्कुल दो भिन्न चीजें हैं, एक जड़ है, नाशवान है, और एक चेतन है, अजर अमर अविनाशी है। शरीर की रचना जो है उसे हम सब जानते हैं, पंच भौतिक, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। जैसे ही ये शरीर छूटता है, इसकी अंतिम क्रिया कर दी जाती है, उसके बाद पांचों तत्व अपने पांचों तत्वों में फिर से मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जो आत्मा है वो क्या चीज है? जैसे हमारा ये शरीर पांच तत्वों का पुंज है, ऐसे जो पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योत स्वरूप आत्मा है हमारे अंदर, वो सात गुणों का पुंज है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। इन सातों का जो इसेंस है, जो उस चेतना के अंदर है, उस आत्मा के अंदर है। इसीलिए देखो, हर आत्मा को, हर व्यक्ति को शांति अच्छी लगती है, चाहे वो दूसरों को अशांत करता रहे, लेकिन खुद क्या चाहेगा? मैं बिल्कुल है, मुझे शांति, कहेंगे शांति से जीने दो, शांति अच्छी लगती है, प्रेम अच्छा लगता है, पशु पक्षी को भी अच्छा लगता है प्रेम का व्यवहार, कहेंगे चाहे रूखी रोटी मिल जाए पर प्रेम से बोलो, प्रेम का व्यवहार करो। प्रेम सबको अच्छा लगता है, सुख सबको अच्छा लगता है। यहां तक कि जो लोग गलत काम करते हैं, चोर डाकू हैं, उनसे भी कुछ क्रॉस क्वेश्चन किए जाएं तो अंत में इन सातों के ही निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। पहले कुछ कुछ और बोलेगा, मुझे धन मिल जाए, फिर मेरा वो धन से क्या करोगे, मेरा परिवार सुखी हो जाए, सुख शांति इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा। तो हर आत्मा की जो खोज है वो इन सात गुणों के लिए है। जब आत्मा उस घर से आई थी तो इन सातों गुणों से भरपूर थी, इसीलिए कहते हैं सतो गुणी आत्मा, सातों गुणों वाली आत्मा। लेकिन धीरे धीरे जब जन्म मरण के चक्कर में आते आते आत्मा की सुख शांति पवित्रता धीरे धीरे कम हो जाती है और उसका स्थान विकार ले लेते हैं, काम क्रोध, पवित्रता की बजाय काम वासनाएं आ गई, शांति की बजाय धीरे धीरे शांति कम होती गई, आवेश जोश और क्रोध बढ़ता गया। तो इस तरह से विकार उसका स्थान ले लेते हैं, तब जीवन में अशांति होती है, तनाव होता है। तो इसलिए हम अपने मूल स्वरूप को फिर से पहचानें, फिर से अपने उन मूल गुणों को विकसित करें और मेडिटेशन के द्वारा इन सातों गुणों को हम फिर से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा इन सभी गुणों के सागर हैं, अनंत हैं उसके पास। जब मन को उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे ये सातों गुण जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा सातों गुणों का पुंज है। आत्मा और शरीर बिल्कुल भिन्न है। ये शरीर की जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, ये शरीर रूपी रथ और इसकी कर्मेंद्रियां घोड़ों के समान है, और आत्मा इन सबको कंट्रोल करने वाला राजा है। तो हमारी इस देह का जो राजा है वो आत्मा है। उसके साथ साथ आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो उसके अंदर चेतना है, वो तीन सूक्ष्म शक्तियों के कारण है। और वो तीन शक्तियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार। मन आत्मा की विचार शक्ति है, बुद्धि उसकी निर्णय शक्ति है, और उसके बाद हम जो भी कर्म करते हैं उसका सूक्ष्म प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, और वो प्रभाव पड़ते पड़ते धीरे धीरे हमारी आदतें डेवलप होती हैं, और वो आदत जब पक्की हो जाती है तो उसी को कहते हैं संस्कार। इन्हीं संस्कारों के आधार पर किसी को महात्मा कहेंगे, किसी को पापात्मा कहेंगे, किसी को पुण्य आत्मा कहेंगे, क्योंकि संस्कार सबके अलग अलग हैं, क्योंकि कर्म सबके अलग अलग हैं। और ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे मनुष्य के मन में विचार चलते हैं तो फिर बुद्धि उसके ऊपर निर्णय करती है। कई बार एक ही काम को करने के लिए हमारे मन में दो तरह के विचार उठते हैं, किस काम को करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, खाऊं या ना खाऊं। यहां आने से पहले आपके मन में भी विचार चला होगा कि माउंट आबू का निमंत्रण मिला है, बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, बहुत सारे काम हैं, जाऊं या ना जाऊं, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप निर्णय पर पहुंचे, कितना सुंदर प्रोग्राम है तो जाना ही चाहिए, और आप चल करके आए। तो मन विचार उठाता है, बुद्धि निर्णय करती है, उसके बाद हम कर्म करते संस्कार बनते हैं। और फिर जैसे संस्कार होते हैं, मन और बुद्धि उसके अधीन काम करना शुरू कर देती है। देखो, एक चोर के मन में सारा दिन विचार उठेंगे चोरी के, और जो उसकी बुद्धि निर्णय करेगी वो क्या करेगी कि चोरी करना ही ठीक है। लेकिन एक संत के मन में जो विचार उठेंगे वो समाज के कल्याण के लिए उठेंगे, और उसकी बुद्धि जो निर्णय करेगी वो अच्छे कर्मों की तरफ उसको अग्रसर करेगी। जैसे संस्कार वैसा ही मन प्रभावित होता है, और वैसे ही बुद्धि का निर्णय भी प्रभावित होता है। अब अगर हमें अपने संस्कारों को बदलना है तो इन तीनों में से पहले किसको पकड़ना पड़ेगा? किसको? अगर संस्कार बिगड़े हुए हैं, उनको ठीक करना है, तो पहले किस पर ध्यान देना पड़ेगा? किस पर? मन पर। तो क्योंकि मन जो है वो इंसान के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन अक्सर हम क्या कह देते हैं कि ये मन जो है ये तो चंचल घोड़ा है, ये तो टिकता नहीं है। अर्जुन भी भगवान से पूछता है कि ये मन जो इतना चंचल है इसको काबू में कैसे किया जाए। तो उसके लिए भगवान ने दो ही तरीके बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। इस मन को अगर हम अच्छा काम देंगे और बार बार अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे ये मन जो है वो ठीक दिशा में चलना भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि घोड़ा बुरा नहीं होता है, घोड़े का जो मालिक है वो ठीक रीति से होश में बैठे और उस घोड़े की लगाम को पकड़ करके रखे तो वो जहां चाहे उसको सैर भी करा देगा। लेकिन घोड़े पर जो सवार है वो बेहोश होकर के बैठे और लगाम को भी छोड़ दे, तब घोड़ा उसको जहां चाहेगा वहां ले जाएगा और आखिर गिराएगा। तो आज यही स्थिति इंसान की है, वो स्वयं को ही नहीं जानता, बेहोश, व्यसनों में बेहोश है, विकारों में बेहोश है, लगाम उसके हाथ में है ही नहीं। तो ये मन रूपी घोड़ा जहां चाहे उसको ले जाता है। वास्तव में ये मन ही है जो हमारा भगवान से भी मिलन कराता है, जो हमारे ऋषि हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उन्होंने इस मन को काबू में करके, मन को अभ्यास के द्वारा उस ईश्वर में एकाग्र करके बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर ली। विज्ञान ने भी मन को किसी चीज पर केंद्रित किया तो बड़ी बड़ी खोज कर ली। इसलिए मन को दोष नहीं देना है, मन तो एक शक्ति है, उसका हम सदुपयोग करें। और हमारे मन के अंदर सुबह से लेकर के शाम तक मुख्य रूप से चार तरह के विचार चलते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव सकारात्मक विचार, दूसरे नकारात्मक, तीसरा व्यर्थ और चौथा साधारण विचार। पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट और सिंपल थॉट्स। पॉजिटिव जिसमें हम कुछ अच्छा सोचते हैं खुद के बारे में, समाज के बारे में, कुछ ना कुछ अच्छा, पॉजिटिव शुभ चिंतन। नेगेटिव जहां हम कुछ ना कुछ गलत सोचते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में। और तीसरे होते हैं व्यर्थ विचार, जिन बातों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। कभी कोई बीती घटना याद आ गई तो उसके ऊपर चिंतन चलना चालू हो जाता है, व्यर्थ विचार। कभी हम भविष्य की चिंता करते हैं, पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन जो प्रेजेंट हमारे हाथ में है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वेस्ट थिंकिंग। और चौथे होते हैं साधारण विचार, जो हमारी दिनचर्या से, हमारे कारोबार से संबंधित होते हैं। लेकिन आज ज्यादा विचार मनुष्य को दिन भर में कौन से चलते हैं? चारों में से, चारों में से बहुत ज्यादा कौन से चलते हैं आम आदमी को? महिलाएं बताएंगी, व्यर्थ चलते हैं, नेगेटिव चलते हैं। और जो नेगेटिव और वेस्ट थिंकिंग है वो आत्मा की शक्ति को क्षीण करती है। जितना पॉजिटिव सोचते हैं आत्मिक शक्तियों का विकास होता है। अगर बच्चा स्कूल से आने में लेट हो गया तो मां को पहला विचार कौन सा चलेगा? कौन सा चलेगा? कुछ नेगेटिव चलेगा है, कभी एक्सीडेंट ना हो गया हो, किडनैप ना हो गया हो, ये सब कुछ अच्छा नहीं सोच पाएगी कि हो सकता है स्कूल में कोई फंक्शन हो, उसे कोई अवार्ड मिलना हो। अब हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच पाते हैं? क्योंकि नेगेटिव की आदत हमने पक्की कर ली। और ये नेगेटिव आया कहां से, तो इस मन पर हम थोड़ा विचार करते हैं तो ये जो मन है इसके अंदर इतनी अनंत शक्ति है। और इंसान का मन के अंदर जो एक एक विचार चलता है, मन माना संकल्प शक्ति, थॉट पावर, तो हमारा जो एक एक विचार चलता है वो हमारे भाग्य का निर्माण करता है, वो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसीलिए कहते हैं एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, जैसा सोचोगे वही बनोगे। तो कैसे एक विचार जो है वो हमारी हर चीज को प्रभावित करता है। एक छोटा सा उदाहरण सुनाऊंगी मैं पहले। एक बार एक महात्मा जी, बड़े संत, अपने छोटे शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे, यात्रा लंबी करके आए थे। और जंगल में जो उनकी तपस्या स्थली थी, कुटिया थी, उसकी तरफ आ रहे थे। ऐसे ही दिन थे जैसे आजकल हैं, बारिश के दिन थे, तेज हवाएं थी। और उन तेज हवाओं से उस झोपड़ी का आधा छप्पर उड़ गया था। तो जैसे ही महात्मा जी नजदीक आए तो वो दोनों हाथ जोड़ करके भगवान का शुक्रिया करने लगे कि हे ईश्वर, तुम कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो। हवाओं का क्या भरोसा था, वो पूरा छप्पर भी उड़ा सकती थी, ये जो आधा बचा है ना, ये तुमने ही बचाया है, तुम्हारी हमारे ऊपर कितनी कृपा है। और साथ साथ जो छोटा सन्यासी था, जो छोटा उनका शिष्य था, जैसे ही झोपड़ी को देखा तो भगवान को कोसने लगा, हम तेरी रोज साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोगों के इतने बड़े बड़े महल कोठियां खड़ी हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, और हमारी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी उसका भी तूने आधा छप्पर उड़ा दिया। दो सोच, स्थिति एक ही है, सोच दो हैं। अब जो पॉजिटिव सोच रहा है उसकी फीलिंग कैसी है, वो खुश है, वो भगवान का शुक्रिया कर रहा है। और जो नेगेटिव सोच रहा है वो परेशान है, वो अशांत है उसी परिस्थिति में। फिर रात को दोनों उस कुटिया के अंदर सोए तो जो परेशानी में सोएगा उसको नींद आएगी, सारी रात नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा, भगवान को कोसता रहा। लेकिन महात्मा जी बड़े आराम से सोए और जब जब नींद खुली तो फिर भगवान का शुक्रिया कर दिया। और सुबह उठने के बाद भी कहा, हे ईश्वर, आज रात को बड़ी अच्छी नींद आई, और जब जब नींद आई तो आसमान में आपके तारे भी देखे, चंद्रमा को भी देखा, बड़ा आनंदित। और शिष्य सुबह उठ करके फिर भगवान को कोसने लगा। तो ये है विचार की शक्ति। अब इसको हम देखते हैं कि जो थॉट है उससे फीलिंग पैदा होती है। अगर हम अच्छा सोचते हैं, खुशनुमा, आनंद, शांति की फीलिंग आएगी। अगर हम गलत सोचते हैं तो उस शिष्य की तरह दुख की फीलिंग, बेचैनी, चिंता। फिर विचार से फीलिंग, और जैसे बार बार विचार और फीलिंग होते हैं उससे हमारा एक दृष्टिकोण बनता है, एटीट्यूड बनता है। अगर हमने नेगेटिव सोचने और नेगेटिव देखने की आदत डाल ली तो क्या होगा, हर चीज को ही हम नेगेटिव रूप में देखेंगे, सारा दिन सबकी नेगेटिविटी, तो एक दृष्टिकोण नेगेटिव बन जाएगा। और जैसा इंसान का दृष्टिकोण होता है वैसे ही उसके कर्म होते हैं, वो कर्म भी ऐसे ही करेगा फिर। और जैसे कर्म करेगा तो वैसी उसकी आदतें बनेंगी, क्योंकि जो कर्म बार बार किया जाता है उसकी एक छाप लगती है आत्मा पर और उससे आदत बन जाती है। जैसे पहली बार कोई बच्चा जब बीड़ी सिगरेट संग दोष में आकर के शुरू करता है तो वो डरता है, झिझकता है, पीऊं या ना पीऊं। लेकिन एक दो बार जब ये कर्म कर लेता है, उसकी इंप्रेशन पड़ गई, तो जब तीसरी चौथी बार करेगा तो उसे कोई डर नहीं लगेगा, आदत बन गई, डेवलप हो गई। और जैसे जैसे हमारी आदतें पक्की होती हैं, वो एक इंसान की पर्सनैलिटी हो जाती है। हमारे संतों की पर्सनैलिटी देखो कैसी है, और जो दूसरे गलत चिंतन वाले उनकी पर्सनैलिटी देखो कैसी है। तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कौन करता है? हमारा जैसा व्यक्तित्व है वही उसका भाग्य है, वही उसका जीवन है। तो अगर हम शुरू से देखें और लास्ट को देखें, थॉट से जीवन की डेस्टिनी, भाग्य का निर्माण होता है। तो इतनी बड़ी शक्ति है इंसान के एक एक विचार में, उसकी एक एक सोच के अंदर इतनी बड़ी ताकत है। इसलिए हमें अपने दिन भर के एक एक विचार पर ध्यान देने की जरूरत है। और कई बार मनुष्य क्या सोचता है कि मैं गलत सोचना नहीं चाहता हूं। जैसे कोई बहुत टेंशन में होता है ना, और डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर कहेगा कि ये दवाई लो लेकिन चिंता मत करना। अब उस बेचारे को ये पता नहीं कि चिंता क्यों हो रही है और कैसे छूटेगी, और डॉक्टर को भी नहीं पता। उसको ये तो पता है कि चिंता करने से बीमारी बढ़ेगी, क्योंकि डॉक्टर खुद भी सारा दिन चिंता में ही है, कितने पेशेंट आए, कितने नहीं आए, क्या हुआ। तो इस प्रकार से विचार, वो भी कहता है डॉक्टर साहब क्या करूं, चिंता छोड़ूं कैसे, मैं चाहता तो नहीं हूं पर छोड़ूं कैसे। तो ये चिंता और तनाव कहां से उपज रहा है, उसको भी हमें देखने की जरूरत है। तो उसमें जो है ना, तीन चीजें हैं मुख्य रूप से। एक है इंफॉर्मेशन, जो सूचनाएं हमारे अंदर जाती हैं, जो सूचनाएं हम ग्रहण करते हैं वो हमारे विचार चलवाती हैं। जैसे देखो, सुबह सुबह उठते ही क्या चाहिए? आजकल थोड़ा सिस्टम बदल गया, पहले सुबह सुबह उठते ही न्यूज़पेपर चाहिए, है ना। और न्यूज कैसी होती है न्यूज़पेपर के अंदर, आजकल वो मोबाइल टीवी में देख लेते होंगे, सुबह उठते ही न्यूज। और न्यूज कैसी होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव? जो फर्स्ट पेज पर मोटे मोटे अक्षरों में जो लिखेंगे ना, सारी नेगेटिव। आज एक बस गिर गई नदी में, इतने लोग मर गए, ये हो गया, बादल फट गया, एक्सीडेंट हो गया, ऐसी ऐसी खबरें होती हैं सुबह सुबह पढ़ी। और सवेरे सवेरे जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो देखता है, जो पढ़ता है, वो सुनता है, वो हमारे अंदर भी समा जाता है। अब जैसे कहा कि माँ को बच्चा लेट आया तो ये विचार क्यों चला, एक्सीडेंट, किडनैप, क्योंकि सुबह सुबह कुछ पढ़ा था और वो अपने अंदर में चला गया था, और वो इफेक्ट करता है हमारी सोच को। इसलिए हमारी भारत की संस्कृति के अंदर ये नियम है कि सवेरे सवेरे उठ करके भगवान को याद करो, अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो, क्योंकि जो सुबह सुबह किया वो सारा दिन हमारे विचारों को, हमारे मन को प्रभावित करता है, सूचनाएं। दूसरे होते हैं पास्ट एक्सपीरियंस, जो हमारे भूतकाल के अनुभव हैं, किसी व्यक्ति के साथ कुछ ऐसे ऊपर नीचे हो गया, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, दो शब्द गलत बोल दिए, तो हम उनको अपने साथ बांध के चलते हैं। फिर से वो व्यक्ति मिला तो वो पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर हम व्यवहार करते हैं, जो कि गलत है। और तीसरी चीज होती है बिलीफ सिस्टम, हमने जीवन में कुछ ऐसी मान्यताएं बांध रखी हैं कि जो हमारी सोच चलवाती है। तो इसलिए हमें इन पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उसके साथ साथ अपने इस मन को, जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, इसीलिए कहते हैं ना, मन जीते जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया तो समझो जगत को जीत लिया। तो ये जो मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, इस मन को हम शक्तिशाली कैसे बनाएं? तो उसके लिए कुछ चीजों को हम सामने रखेंगे। गीता में एक बहुत सुंदर भाव दिया है भगवान ने कि जो भी कर्म करो अनासक्त भाव से करो, मेरा कुछ नहीं। जैसे एक नर्स है जो पेशेंट आते हैं उसकी बड़े प्यार से सेवा करती है, लेकिन जब वो जाने लगते हैं तो वो रोती नहीं है, वो दुखी नहीं होती है, उसने अपना कर्म किया अनासक्त भाव से, ट्रस्टी भाव जिसको कहते हैं। जैसे किसी मंदिर धर्मशाला का ट्रस्टी होता है तो ये समझता है ट्रस्ट की अमानत है, मैं तो केवल उसकी संभाल कर रहा हूं। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, अपने शरीर सहित तन मन धन संबंध सब कुछ, ये उस प्रभु की अमानत है और हम केवल उस अमानत को संभाल रहे हैं। लेकिन जीवन में चलते 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 अमानत भूल करके इंसान क्या समझने लगता है कि ये सब कुछ मेरा है, मैं संपत्तिवान हूं, मैं बुद्धिवान हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, कई तरह का अहम पैदा हो जाता है। और जहां अहम को थोड़ी सी ठेस लगती है वहां अपमान की फीलिंग आती है, अभिमान और अपमान जो जीवन को अशांत कर देता है। जब हम ये समझते हैं सब कुछ उस प्रभु की अमानत है, हम केवल उसे संभाल रहे हैं, तो हम निश्चिंत रहते हैं, प्रेम भाव में रहते हैं। फिर उसके साथ साथ दूसरी चीज है थिंक लेस थिंक पॉजिटिव। अगर हमें अपने मन को शक्तिशाली बनाना है तो हम कम से कम सोचें और अच्छे से अच्छा सोचें, कम सोचें और अच्छा सोचें। लेकिन इंसान इसके उलट करता है, बहुत ज्यादा सोचता है और नेगेटिव सोचता है, कभी बच्चों के बारे में, कभी अपने शरीर के बारे में है कि कोई छोटी सी भी बीमारी आ गई तो पता नहीं क्या होगा, ये बढ़ ना जाए, मैं चला ना जाऊं, है ना, बच्चों के बारे में इनका भविष्य क्या होगा, पता नहीं बड़े होकर सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा और नेगेटिव। तो इसलिए हमें कम सोचना है और पॉजिटिव सोचना है। जैसे जैसे हम अच्छा सोचेंगे, चिंतन का जो सोचने का जो संख्या है विचारों की, वो अपने आप कम हो जाएगी। एक नॉर्मल माइंड जो है वो एक मिनट में 20-25 विचार उठाता है, और जब इंसान टेंशन में होता है तो ये विचारों की संख्या 40-45 हो जाती है एक मिनट में। और जब मनुष्य मेडिटेशन करता है तो ये विचारों की संख्या धीरे 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 स्लो हो जाती है, और जितनी स्लो होती है, विचार धीमे चलते हैं, वो अच्छे होते हैं, वो क्वालिटी वाले होते हैं और वो आत्मा को शक्ति देते हैं। तो इसलिए कम सोचना है और पॉजिटिव सोचना है। तीसरी चीज है अवॉइड होल्डिंग नेचर। आज के इंसान के अंदर ये एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि वो बहुत सारी बातों को मन में पकड़ के रखता है। 5 साल पहले किसी के घर में गए, उसने थोड़ा सा सम्मान पूरा नहीं दिया जो चाहते थे, तो बस उस चीज को पकड़ के रखते हैं, उसने मेरा अपमान कर दिया। मान लो किसी ने 2 शब्द बोल दिए अपमान के, 2 शब्द एक सेंटेंस समझो बोला, अब उसने तो एक सेंटेंस जो बोला उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट हमारा खराब किया होगा, आधा मिनट। लेकिन उसी विचार को बार 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 मन में दोहराते हैं, जितनी चोट उस समय फील हुई थी उतनी ही चोट बार बार क्रिएट करते हैं। अब मान लो कोई चोट लग जाए, छोटा सा घाव, लेकिन उस घाव को बार बार छेड़ेंगे तो क्या होगा, वो बड़ा नासूर बन जाएगा। तो आज इंसान की यही स्थिति है कि वो बार बार उन गलत बातों को सोचता है, तो उस व्यक्ति ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया या खुद ने खुद को ज्यादा पहुंचाया, किसने, हम कहते ना फलाने ने दुखी किया, उसने तो एक मिनट ली थी, एक वाक्य बोला था, हमने हजार बार वो वाक्य दोहराए और कितना समय लगाया, तो किसने ज्यादा परेशान किया? खुद ने खुद को। तो इसलिए बातों को मन में पकड़ के नहीं रखना है। अगर हम बातों को पकड़ के रखते हैं तो अपना ही नुकसान होता है और हम बोझिल हो जाते हैं, बोझिल बहुत बेचैन हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को। किसी भी छोटे से छोटी चीज को अगर हम पकड़ के रखें, ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, अगर इसको मैं 24 घंटे ऐसे पकड़ के रखूं तो हाथ में दर्द भी होने लग जाएगा, जबकि इसमें ज्यादा वजन नहीं है। बातों में वजन नहीं होता है, लेकिन लंबे समय पकड़ के रखते हैं तो वो हमें बोझिल जरूर कर देती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके बातों को छोड़ो और भूल जाओ। यहां इसी सूर्य विश्वविद्यालय में भगवान एक बहुत सुंदर बात हम सबको सुनाते हैं, समझाते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा करो और भूल जाओ। कई बार हम क्षमा तो कर देते हैं, लेकिन वो क्षमा भी कैसी होती है? कहेंगे तुमने तो हमारे साथ इतना किया, पर चलो हम तो फिर भी तुम्हें माफ करते हैं, वो क्षमा नहीं है। तुमने इतना किया वो भी याद है, मैं क्या कर रहा हूं वो भी याद है, वो क्षमा नहीं है। क्षमा उसको कहेंगे कि हम बहुत अच्छी तरह प्रेम भाव से उस बात को चित्त से निकाल दें और उसके लिए अच्छा संकल्प रचें कि हे ईश्वर इसे भी सद्बुद्धि देना, तो जीवन बहुत हल्का हो जाएगा। इसीलिए किसी ने कहा, हमने तो जीवन को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। इसलिए बातों को चित्त में पकड़ के नहीं रखना है, नहीं तो हम बोझिल रहेंगे। इसलिए हम आप सबसे भी, जो हमारे शिष्यगण अनुयायी गण आए हुए, उनसे भी अनुरोध करेंगे, क्योंकि हमारे संत तो पहले क्षमा करते हैं सबको, आप सब भी यहां से ये संकल्प जरूर लेकर जाएं कि किसी ने जीवन में कुछ गलत भी किया है तो उसे क्षमा करो और भूल जाओ। एक बार यही बात जब हम सुना रहे थे तो एक बहू ने कहा कि मैं अपनी सास को कभी क्षमा नहीं कर सकती, औरों को कर दूंगी, क्योंकि उसने मुझे, तो उसको यही समझाया कि आपके जीवन में वही एक परीक्षा है, जब तक उसे पास नहीं करोगे तो पास नहीं हो सकते। और जैसे ही हम क्षमा भाव रखते हैं तो हमारी वो क्षमा की ऊर्जा दूसरे व्यक्ति के मन को भी बदलती है। इसलिए होल्डिंग नेचर, पकड़ने की जो भावना है, छोटी छोटी बातों को जो हम पकड़ के रखते हैं, तो उसे हमें जीवन में जरूर परिवर्तन करना है। फिर एक फार्मूला दिया गया है मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, ABCD फार्मूला। A फॉर अवॉइड, जीवन में कुछ बातों को अवॉइड करो, हर बात में उलझने की जरूरत नहीं है। B फॉर बाईपास, कुछ चीजों को हम जीवन में बाईपास करें, जैसे बाईपास रोड होता है ना, कहीं से हम जा रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है तो सोचते हैं भाई बाईपास से चलो, कुछ चीजों को बाईपास करो, बीच में जाके टकराने की आवश्यकता नहीं होती। दो का झगड़ा है, पड़ोसी के घर में कुछ है और हम क्या करते हैं, हैं? बीच में जाके कुछ ना कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाईपास। सी फॉर कैंसल, कुछ चीजों को जीवन में पूरी तरह कैंसिल कर दो, जो व्यसन है, विकार है, नशे हैं, है ना, हिंसा की भावना है, कुछ चीजों को बिल्कुल कैंसिल कर दो। और डी फॉर डू, जो जीवन में आवश्यक है, जो जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला है, उसे हम जीवन में करें। अवश्य करें, मेडिटेशन रोज करें, श्रेष्ठ चिंतन रोज करें, तो इन कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे तो अपने मन को बहुत शक्तिशाली हम बना सकते हैं। फिर जो दूसरी शक्ति चेतना थी आत्मा की, वो है बुद्धि, और बुद्धि जो है वो हमारी निर्णय शक्ति है। जैसे जैसे मन पावरफुल बनेगा, मन श्रेष्ठ चिंतन करेगा और बुद्धि से सही निर्णय लेकर चलेंगे, तो वैसे वैसे जीवन का हर कर्म श्रेष्ठ होगा। तो इस प्रकार से फिर तीसरी चीज है संस्कार। मन ने विचार उठाया, बुद्धि ने निर्णय किया और उसके बाद हमारे संस्कार बनते हैं। अब ये जो संस्कार होते हैं, ये आत्मा मुख्य रूप से पांच तरह से संस्कार अर्जित होते हैं। एक होते हैं पूर्व जन्म के संस्कार। आत्मा पूर्व जन्म के संस्कारों को कैरी फॉरवर्ड करती है अगले जन्म में। इसीलिए हम देखते हैं एक ही घर के अंदर एक ही माता पिता के बच्चे, एक जैसी पालना मिलती है फिर भी दोनों की नेचर में फर्क होता है। एक बच्चा पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होगा, एक डल होगा, एक बड़े शांत स्वभाव का होगा और एक बड़ा उग्र होगा। अब एक जैसी पालना, एक ही माता पिता, फिर भी फर्क क्यों? क्योंकि आत्मा पूर्व जन्म से भी संस्कार लेकर आई है। कई बच्चों को बचपन से ही बड़ा डर लगता है, पानी से डर लगता है, अग्नि से डर लगता है, विमान में बैठने से डर लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पिछले जन्म की मृत्यु है उसमें ये सब चीजें कारण बनी होंगी, तो इसलिए भय खाता है वो। पूर्व जन्म से लाई है आत्मा संस्कार। दूसरा संस्कार घर से परिवार से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं, जिसको हेरिडिटी का इफेक्ट कहते हैं। कुछ वंश का जो असर है वो संस्कारों में आता है। तीसरा संस्कार आसपास के वातावरण से, संघ से मिलते हैं। अगर किसी बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे हैं लेकिन आगे उसको कुसंग मिल गया तो संस्कार खराब भी हो जाते हैं, और संस्कार बहुत खराब थे लेकिन वातावरण अच्छा मिल गया, संतों का मिल गया, तो संस्कार सुधर भी सकते हैं। तो तीसरा संस्कार संघ से मिलते हैं, और चौथा संस्कार विल पावर से मिलते हैं। कईयों की विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है कि मुझे ये काम करना ही है। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम देखते हैं कि जो है ना वो पहाड़ पर चढ़ गई, हालांकि फ्रैक्चर हो गया था। अरुणिमा सिन्हा का जो दिखाते एक है ना, एक्चुअली एक लड़की है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन से टांग कट जाती है, लेकिन उसने लक्ष्य रखा कि मुझे हिमालय की चोटी पर चढ़ना है और चढ़ के दिखाया। ऐसे मतलब विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है तो उससे भी संस्कार चेंज हो जाते हैं। और जो पांचवें संस्कार हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वो होते हैं आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। जब वो परम धाम से भगवान के पास से आई थी इस जगत में, तो जो मूल सात गुण बताए थे ना, वो उसके असली संस्कार होते हैं। शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, एक छोटे से बच्चे के अंदर भी वो संस्कार झलकते हैं, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं, प्रेम है, शांति है। तो इस प्रकार से सात तरह से, पांच तरह से हमें संस्कार मिलते हैं, पूर्व जन्म से, माता पिता से, वातावरण से, विल पावर से, और ओरिजिनल संस्कार सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता। आज हमारे जो ओरिजिनल संस्कार हैं वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, क्योंकि चिंतन गलत हो गया, और वो सुख शांति आनंद प्रेम का स्थान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना इन्होंने ले लिया। अब जो मेडिटेशन है वो क्या काम करता है? मेडिटेशन हमारे ओरिजिनल जो संस्कार हैं उनको फिर से डेवलप करता है, क्योंकि परमात्मा शांति के सागर हैं, उनके साथ जब हम मन को जोड़ते हैं तो तो वो शांति मिलती है। फिर से वो शांति की एनर्जी आत्मा को मिलती है और जो उसका अंदर का ओरिजिनल संस्कार है वो जागना शुरू हो जाता है। शांति, आनंद, प्रेम, जैसे जैसे मेडिटेशन करेंगे, सुख शांति के सागर है भगवान, उसके साथ मन को जोड़ेंगे, आत्मा की शांति बढ़ती जाएगी, उसका प्रेम बढ़ता जाएगा, उसका आनंद बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे वो ओरिजिनल संस्कार जाग जाएंगे तो जीवन में आनंद ही आनंद का अनुभव कर सकेंगे। तो इसलिए मेडिटेशन जरूरी है। तो हमने जो शुरू में देखा था कि जो आत्मा है उसकी तीन चेतन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, जिस पर हमने चिंतन किया, मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पे। अब जो पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है वो हमारे शरीर में कहां बैठती है, मस्तक में, इसलिए हम तिलक यहीं पर लगाते हैं। जब किसी बात पर हमें गहराई से विचार करना हो तो कई बार यहीं हाथ रख करके सोचते हैं, कई बार जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो यहीं हाथ रख करके कहेंगे मेरी किस्मत ही ऐसी है। यानी जो सोचने वाली शक्ति है, ज्यादा सोचने से दर्द कहां होता है, कहेंगे आज मेरे सिर में दर्द है, माथा भारी हो गया। जो सोचने विचारने वाली शक्ति है उसका यहां मस्तक में, जिसे भ्रुकुटी कहा जाता है, यहीं पर वो चेतना शक्ति है। इस शरीर को अगर गाड़ी कहें तो आत्मा इसका ड्राइवर है जो इसको चलाती है, और ये फ्रंट सीट पे बैठ के चलाती है। जैसे ड्राइवर के बैठने की स्पेशल सीट होती है आगे, जहां पर स्टेयरिंग है, ब्रेक है, गियर है, जहां वो पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है। तो हमारी इस शरीर का भी जो कंट्रोल रूम है वो ब्रेन है, आत्मा कंट्रोलर है। आंखें, मुख, कान, ज्यादा कर्मेंद्रियां भी हमारी, ज्ञानेंद्रियां भी यहीं पर हैं। तो जो सारी कर्मेंद्रियों की कंट्रोलर है वो यहां ही बैठ करके इस देह को चलाती है। और ये शरीर तो आत्मा का टेम्परेरी स्थान है, एक न एक दिन ये छूट जाएगा, भ्रुकुटी भी छोड़नी पड़ेगी आत्मा को। तो फिर आत्मा का असली घर कौन सा है? हम सब कहते हैं संसार एक मुसाफिर खाना है, ना घर तेरा है ना घर मेरा है, एक दिन हमें यहां से जाना है। तो वो जो हमारा असली घर है वो कौन सा है? तो यहां ये तीन लोक का चित्र दिखाया है, जिसमें नीचे नीला आकाश, ये साकार जगत है जिसमें हम इस समय बैठे हैं, जिसको मृत्यु लोक भी कहते हैं, जहां आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है। ये देह रूपी वस्त्र पहन करके हम खेल करते हैं, देह को धारण करना ही जन्म है और देह को छोड़ देना ही मृत्यु है। लेकिन आत्मा की तो कभी मृत्यु होती नहीं, उसकी यात्रा तो बहुत लंबी है, एक वस्त्र छोड़ करके फिर जाकर के दूसरा धारण कर लेती है। तो इस प्रकार से आत्मा का फिर मूल ठिकाना कौन सा है? जैसे गाड़ी में तो ड्राइवर उतनी देर बैठेगा जब तक उसको चलानी है, फिर गाड़ी को गैरेज में छोड़ के और अपने घर जाके वो विश्राम करता है। तो आत्मा का वो घर इस तीन लोक में दिखाया। तो नीचे साकार मनुष्य लोक, उसके ऊपर है सूक्ष्म देव लोक, और उससे भी पार जो तीसरा लोक है जहां अखंड शांति है, इसलिए उसे शांति धाम कहते हैं। वहां आत्मा जाकर के सब दुखों से, देह से, बंधनों से छूट जाती है, इसलिए उसे मुक्ति धाम भी कहते हैं। वो सबसे ऊपर है इसलिए उसे परम धाम भी कहते हैं। तो हम सबके रहने का जो असली ठिकाना है वो परम धाम है। वहां से ही उतर करके हम आत्माएं इस सृष्टि मंच पर आते हैं और ये देह रूपी वस्त्र धारण करके अपना रोल अदा करते हैं। तो अब हमें जो संस्कार आत्मा उस परम धाम से उतरी थी, तब जो संस्कार लेकर आई थी वो हमारे संस्कारों की पूंजी, जिसके कारण हम बहुत आनंद में थे, खुशनुमा थे, उस पूंजी को फिर से अर्जित करने की जरूरत है। और उसे अर्जित करने के लिए सबसे पहले आत्मचिंतन करने की जरूरत है। मैं कौन हूं? मैं एक प्रकाश पुंज, शक्ति पुंज आत्मा हूं, और खुशियों के खजानों का जो मालिक है भगवान, मैं तो उसकी संतान हूं। है बहुत पावरफुल पॉजिटिव थॉट, और इसलिए मुझे सदा खुश रहना है। जब तक जीना है तब तक मुझे खुश रहना है। इंसान के संकल्प में वो शक्ति है कि वो जो बनना चाहे वो बन सकता है, जो अनुभव करना चाहे वो कर सकता है। तो जब हम बार बार आत्मचिंतन करते हैं कि मैं एक बहुत खुशनुमा आत्मा हूं, मैं तो खुशियों के भंडार ईश्वर की संतान हूं, मैं तो सुख शांति के सागर की संतान हूं, तो ये पॉजिटिव थॉट हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। और धीरे धीरे आत्मा की जो खुशी है, जो आनंद है, वो बढ़ता ही जाता है। और जिस व्यक्ति के संकल्प में शक्ति है, वो जीवन में जो चाहे वो कर सकता है। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि एक बार एक राजा ने अपनी राजधानी के अंदर एक कंपटीशन रखा, क्योंकि पुराने जमाने में जो आज जैसे साधन है ना मनोरंजन के, वो नहीं थे। और इसलिए राजा लोग भी कभी कभी प्रजा को खुश करने के लिए कुछ ऐसे आयोजन करते थे, कुछ ऐसे उत्सव रखते थे। तो उन्होंने एक उत्सव रखा और उसमें एक कंपटीशन रखा, और उस कंपटीशन में क्या रखा कि एक बहुत बड़ा सा पत्थर था, बहुत बड़ी शिला थी, और कहा कि इसको तोड़ना है, लेकिन एक ही वार में तोड़ना है। अगर एक वार में नहीं तोड़ा तो फिर वो कंपटीशन से निकल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, लेकिन क्योंकि वो शिला बहुत मजबूत थी, बहुत पक्की थी, और हथौड़े के एक वार पे वो नहीं टूटी। आखिर में जब काफी टाइम हो गया, बहुत सारे लोगों ने ट्राई कर लिया, तो एक पतला दुबला सा व्यक्ति सामने आया उठ करके सभा में से। तो उसको देख करके ही सब हंसने लगे पहले तो, कि औरों से तो टूटी नहीं, ये जरूर तोड़ेगा। फिर राजा ने पूछा, क्या तुम भी ट्राई करना चाहते हो? उसने कहा, जी महाराज। तो उसने कहा, मैं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं हथौड़े का वार करूंगा तो उससे पहले मेरे साथ एक व्यक्ति आया है, वो मेरे कान में कुछ बोलेगा, उसकी परमिशन मुझे चाहिए। तो राजा ने कहा, ठीक है। तो जैसे ही वो नजदीक आया शिला के, और वो दूसरा व्यक्ति आया और उसने कान में कुछ शब्द बोले एक दो मिनट, और उस व्यक्ति ने फिर वो हथौड़ा लिया और बहुत जोर से वार किया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब वो जो व्यक्ति ने उसके कान में बोला था वो क्या था कि तुम राजपूत हो। वो राजपूत था, राजपूतों ने इतिहास रचा है, राजपूतों की कभी हार नहीं होती, तुम अवश्य विजयी होंगे। माना वो पावरफुल पॉजिटिव थॉट की जो डोज थी ना, वो उसके अंदर भर दी, और वो जो एनर्जी है वो शरीर के पुट्ठों और रगों की बजाय हजार गुना ज्यादा होती है, और वो तोड़ पाया। तो इसलिए हम सबको भी शक्ति कहां अर्जित करनी है? अपने मन के अंदर, मनोबल को ऊंचा करना है। और वो मन की शक्ति बढ़ेगी कैसे? वो बढ़ेगी आत्मचिंतन से। तो ये जो आज का पहला विषय है, स्वयं की पहचान, आत्मा की पहचान, मन की पहचान, अपने चिंतन को बदलने की बात, तो इस चिंतन को श्रेष्ठ बनाकर हम अपने अंदर अपना आत्म बल, मनोबल बहुत ऊंचा कर सकते हैं। और जिसका मन शक्तिशाली हो गया उसके लिए सब कुछ संभव है। और उसके लिए ये जो आत्मचिंतन है, आज तो पहला विषय हमने किया, इसके बाद आप दूसरा विषय मेडिटेशन का, तीन इंपॉर्टेंट विषय हैं, आत्मा, परम आत्मा और मन को उसके साथ कैसे जोड़ें। तो अभी आप जो दो दिन यहां हैं, दो तीन दिन, तो ये पूरा मेडिटेशन कोर्स आपको कराया जाएगा और उसमें आत्मचिंतन के साथ साथ परमात्म चिंतन, फिर मन को उसके साथ जोड़ें तो उसकी जो अनंत शक्तियां हैं वो आत्मा के अंदर भरती जाएंगी। तो इसलिए हमें सुबह सुबह उठते ही, जो बताया ना, सुबह सुबह उठते ही हम नई नई न्यूज दुनिया की नेगेटिव, मन उससे कमजोर होता जाता है। तो सवेरे सवेरे उठते ही थोड़ी देर आत्मचिंतन, खुशी का चिंतन, मैं हूं कौन, मैं तो परम शक्ति ईश्वर की संतान हूं। तो सुबह सुबह जो हम चिंतन करेंगे वो हमारी सारी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, क्योंकि इंसान जो देखता है, जो सोचता है, जो सुनता है, वो जो पढ़ता है, वो उसके चित्त में बैठ जाता है और वैसा ही उसका जीवन बनता चला जाता है। आज मनुष्य की यही चीजें बिगड़ चुकी हैं। सवेरे का एक घंटा और रात को सोने से पहले का एक घंटा, ये जीवन में बहुत जरूरी है कि उसको हम सही करें, क्योंकि सोने से पहले का जो समय होता है, नींद आने से पहले उस समय जो चिंतन चलता है वो अंतर मन में पूरी रात चलता है। अगर सोते सोते कोई तनाव लेकर के सोते हैं तो नींद अच्छी नहीं होगी, साउंड स्लीप नहीं होगी, और वो नेगेटिव एनर्जी ब्रेन को पूरी रात कमजोर करेगी। अगर रात को सोने से पहले कुछ अच्छा पढ़ते हैं, एक घंटा पहले तो ये जो मोबाइल की बीमारी है ना, इसको स्विच ऑफ करके एक तरफ कर दो, बेड के नजदीक भी ना रखो, और सुबह का भी ये नियम बना ले कि सुबह उठने के बाद एक घंटे तक उसको टच नहीं करना है। जब आप नियम बना लेंगे तो करने वाले लोग भी उसी तरह से फोन करेंगे। जब आप ये नियम बना लेंगे भाई 9 बजे के बाद मैं कोई कॉल अटेंड नहीं करता, और सुबह जो है 4 से 8 के बीच में कोई कॉल अटेंड नहीं करता, तो लोग भी आपको 8 के बाद ही फोन करेंगे। लेकिन ये नियम बनाने की जरूरत है, नहीं तो सुबह उठते ही किचड़ा और रात को सोते सोते भी किचड़ा। कई तो भोजन करते करते भी जो है ना टीवी देख रहे हैं और जो है भोजन खा रहे हैं। जो भोजन हमारे अंदर जा रहा है वो भी किस एनर्जी वाला जा रहा है वो बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो भोजन भी आत्मचिंतन करते हुए, परमात्मा की याद में भोजन करें तो मन जो है वो शुद्ध सात्विक बनता जाएगा। और सुबह सुबह उठते ही आत्मचिंतन, कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छा सुने, है ना। हमारी तो भारत की संस्कृति के अंदर वैसे भी देखो अमृत वेला, शुभ मुहूर्त, हमारे संत महात्माएं सुबह सुबह उठ करके मनन करते हैं, चिंतन करते हैं हर घर के वातावरण को भी है, क्योंकि जो बाकी भाई बहने आए हुए हैं हम उनसे भी अनुरोध करेंगे हर घर के अंदर भी सुबह सुबह का जो वातावरण है वो ऐसा हो कि कोई भजन लगा लें, कोई अच्छा चिंतन करें, तो बच्चों को भी वो संस्कार मिलेंगे। नहीं तो बहुत बड़ा खतरा आज हमारे समाज के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, कि उनको जो संस्कार मिल रहे हैं वो मोबाइल और टीवी से मिल रहे हैं, वो माता पिता से नहीं मिल रहे हैं। और इसीलिए धीरे धीरे जो हमारी सनातन संस्कृति है और जो हमारे सनातन संस्कार हैं उससे हमारे परिवार और बच्चे दूर होते जा रहे हैं। अगर आप सुबह सुबह उठ करके घर में अच्छा वातावरण क्रिएट करेंगे तो बच्चों के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। आपके बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी पूंजी है आपकी, वो है उनके संस्कार। चाहे आप कितना भी उनके लिए छोड़ करके चले जाना, अगर उनके पास संस्कार नहीं होंगे तो सब कुछ बेकार कर देंगे। और अगर उनके पास संस्कार होंगे, आप कुछ भी ना दे करके जाओ, फिर भी वो बहुत कुछ डेवलप कर लेंगे। तो हमारी ये जो सबसे बड़ी पूंजी है ना, आज के लिए, परिवारों के लिए, बच्चों के संस्कारों के लिए, इसकी जिम्मेवारी माता पिता पर है। बचपन से लेकर के उनको ऐसे संस्कार दो, देशभक्ति के संस्कार, धर्म के संस्कार, श्रेष्ठ चिंतन के संस्कार। लेकिन आजकल जो पेरेंट्स है ना, वो भी सोचते हैं कि बच्चों का जो है ना वो इससे आईक्यू बढ़ जाएगा। एक बार हमारे पास यहां माउंट आबू में, जैसे आप आए हुए हो, तो अब्दुल कलाम जी आए थे और उन्होंने यहां इसी हाल के अंदर बच्चों का और उनके पेरेंट्स का प्रोग्राम रखा था। और उसमें जो है, पहले उन्होंने अपना लेक्चर किया, फिर उसके बाद महिलाओं से, सबसे सभा से कहा कि आप कुछ पूछना चाहो तो पूछो। तो एक महिला खड़ी हुई, उसने कहा, सर मेरा बच्चा जो है वैसे तो पढ़ाई बहुत करता है, लेकिन जब उसके एग्जाम होते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है। तो अब्दुल कलाम जी ने कहा कि परीक्षा से 3 मास पहले उसका मोबाइल टीवी बंद करा दो। तो उसने कहा, सर इससे तो मेरे बच्चे की जो जनरल नॉलेज है ना वो कमजोर हो जाएगी। तो फिर कलाम जी ने उनसे एक प्रश्न किया कि आप तो खूब देखती हो ना, आपकी तो जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होगी, आप मेरे बारे में बताइए क्या जानते हो। तो उसने कहा, सर आप हमारे राष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं, मिसाइल मैन हैं, है ना, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा, आपको ये पता हो कि मैंने 22 विषयों में PhD की है और मैंने जीवन में कभी टीवी नहीं देखा, 22 विषयों में। और जब अब्दुल कलाम जी चले गए, एक्सपायर हुए, उससे पहले वो 33 विषयों में PhD कर चुके थे। तो इस भ्रम को निकाल दें कि टीवी से ही नॉलेज बढ़ेगी। मोबाइल, इंटरनेट की दुनिया बच्चों के संस्कारों को खराब कर रही है। आप उन्हें क्या दे करके जा रहे हैं? एक दिन एक महिला आई, उसने कहा, दीदी मेरा बच्चा है ना बड़ा इंटेलिजेंट है। मैंने कहा, कैसे? कहती है, वो 5 साल का है और वो मैं मोबाइल के सारे फंक्शन जानता है, मुझे नहीं आते हैं, सारी ऐप चला लेता है। मैंने कहा, देखो कमाल है, वो किस चीज को इंटेलिजेंट मान रही है, किस पे गर्व कर रही है? उस बच्चे का भविष्य क्या है? इसलिए इस चीज के लिए हमें जागृत होने की जरूरत है। आदत डालें, सुबह सुबह उठते ही कुछ अच्छा, आप पढ़ोगे तो वो भी पढ़ेंगे। गुरुजी अध्ययन करते हैं, शिष्य भी सीखते हैं। घरों में महिलाएं, माता पिता कुछ अच्छा करेंगे, बच्चे भी वैसा ही करेंगे। इसलिए आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आप सारा दिन सीरियल देखते रहो, उसको कहो नहीं देखना, नहीं देखना, वो सोचतेगा मम्मी भी तो देख रही है, पापा भी तो देख रहे हैं, मैं क्यों ना देखूं। बच्चे व्यसनी कैसे बन जाते हैं? वो देखते हैं घर में बाप पी रहा है, स्कूल में टीचर पी रहा है, फिल्म में हीरो पी रहा है, और मुझे कहते हैं मत पियो मत पियो, मानेगा? बच्चे वो करेंगे जो आप करते हो, जो आप कहते हो, जो आप करते हो वो करेंगे। अगर बच्चों को संस्कार देने तो खुद वो सब कुछ करना है। रात को भी कुछ अच्छा सुनाओ, जैसे पुराने जमाने में दादी नानी कहानियां सुना के, भजन सुना के उनको सुलाती थी। चलो वो नहीं, कुछ तो अच्छा करो, कम से कम थोड़ी देर आप भी मोबाइल छोड़ो, घर में एक नियम बना लो। हम घर गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनों को एक और भी अच्छी बात बताते हैं कि अपने घर के अंदर वाईफाई जोन बनाओ। वाईफाई तो आजकल रखते ही है ना हर घर में, तो यहां वाईफाई से मतलब है विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरेक्शन। एक घंटा तो घर में इकट्ठे मिलके बैठो, एक घंटा तो इकट्ठे मिलके बैठो, बातें करो, इकट्ठे भोजन करो। जो हमारा प्राचीन पुराना सिस्टम था, कितना आपस में प्रेम होता था, बच्चे सीखते थे। तो इसलिए ये आत्मचिंतन आपके लिए भी जरूरी है और आपकी फैमिली के लिए भी जरूरी है। प्रतिदिन आत्मचिंतन में हम कुछ ना कुछ अच्छा चिंतन करते हैं कि मैं कौन हूं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की मैं संतान हूं। इस तरह का श्रेष्ठ चिंतन, मैं प्रकाश पुंज आत्मा हूं। सवेरे सवेरे ही अपने आप को खुराक दे दो, ये आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर को हम रोज भोजन देते हैं तो ये शरीर तंदुरुस्त रहता है, ठीक चलता है। आत्मा की तंदुरुस्ती के लिए उसे पॉजिटिव थॉट देना बहुत जरूरी है। तो हम सभी अभी कुछ क्षण के लिए ऐसा ही आत्मचिंतन करेंगे। सामने हम एक दृश्य देख रहे हैं कि मैं केवल ये पंच भौतिक शरीर नहीं हूं, लेकिन इसके मस्तक में एक चेतना है मेरे, जो मेरा मूल स्वरूप है, जो मेरा सत्य स्वरूप है। और आत्मा के उन सातों गुणों को चिंतन करते हुए रियलाइज करना है। रियल आई, रियलाइजेशन जो होती है ना, वो रियल आई से हो सकती है, अंतर मन की आंख से अपने अंतर स्वरूप को, आत्म स्वरूप को देखते हुए आत्मचिंतन करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम चिंतन करेंगे कि मैं एक चेतना हूं, एक शक्ति हूं, एक प्रकाश पुंज, अति सूक्ष्म चेतन सितारा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट हैज नो डायमेंशन, पॉइंट अति 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 सूक्ष्म होता है। तो मैं एक चेतन प्रकाश का पुंज हूं, एक चेतन शक्ति हूं मस्तक में, और उस मेरी चेतना के अंदर शांति का प्रकाश है, सुख का प्रकाश है, आनंद का प्रकाश है, उसी को हम फील करेंगे। मैं कुछ शब्द उच्चारण करूंगी, आपको वो शब्द बोलने नहीं है, लेकिन आप वो आपके अपने शब्द हैं और आप उनको अंतर मन में अपनी रियल आई से उसको फील करना, महसूस करेंगे। तो आत्मा का चिंतन करते करते हम आत्मा की रियलाइजेशन करेंगे। ओम शांति। कुछ क्षण के लिए चारों तरफ से अपने मन को समेट कर चलें अपने अंदर की ओर, अपने आप से पूछें, मैं वास्तव में कौन हूं? मैं इस पर मस्तक के मध्य में एक जागती ज्योत हूं, चेतन शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप में एक हल्का सफेद ज्योति का सितारा हूं। मन की आंखों से देखें इस मिट्टी के शरीर में, मस्तक के मध्य में एक छोटा सा सफेद सितारा चमक रहा है। यही मेरा सत्य स्वरूप है। मैं ज्योति का सितारा अपने मूल स्वरूप में बिल्कुल शांत हूं। मुझ आत्मा सितारे से शांति की तरंगे निकल रही है। मेरे आसपास शांति का दिव्य प्रकाश है। मैं ज्योत स्वरूप आत्मा, शुद्ध आत्मा हूं। भ्रकुटी में चमकते हुए सफेद सितारे को देखते रहें। मुझ चेतन आत्मा से पवित्रता का सफेद प्रकाश की तरंगे निकल निकल कर मेरे आस पास के वातावरण को भी शांत और पवित्र बना रही है। मैं ज्योति पुंज आत्मा, सर्वशक्तिवान ईश्वर पिता की संतान हूं। सर्वशक्तिवान की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को भी शक्ति से भरपूर कर रही हैं। मुझ आत्मा सितारे से शक्तियों की किरणें निकल रही हैं। मैं शक्ति पुंज आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। मैं आत्मा कितनी सौभाग्यशाली हूं, परम शक्ति ईश्वर की संतान हूं। खुशियों के खजाने की मालिक आत्मा हूं। मुझे सारा दिन सबको खुशी बांटनी है, सबके साथ शांति का व्यवहार करना है। आज मैं आत्मा संकल्प करती हूं, सबको माफ कर देने का, क्षमा क्षमा क्षमा। सब सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। इस जगत में सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, ऐसी शुभ भावना के साथ मुझे जीना है और सबको सुख पहुंचाना है। ओम शांति शांति शांति।